ஓம் சாந்தி. ஜிஸ் சமய கா ஹம் சப் இன்தஜார் கர்னே கே லியே பேட்டே, பாபா கி யாத் கர்தே ஹுயே பவர்ஃபுல் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆர் பி சக்திசாலி பனாய ரக்னே கே லியே, ஆர் ஹமாரா சமய பாபா கேதே சஃபல் ஹோனா சாஹியே. முக்கியமந்திரி ஜி பதார் சுக்கே ஹே ஆர் வோ மதுபன் மே பஹஞ்ச ரஹே ஹே. மதுபன் மே பஹஞ்ச கர் வோ சாந்தி ஸ்தம்ப பர் ஜாயங்கே, மதுபன் கா அவலோகன் கர்கே ஃபிர் சாந்திவன் மே பஹஞ்சேங்கே. தோ அப் ஹம் சமய கோ தேக்தே ஹுயே ஹம் சப்கே பீச் மே மோஹன் பாய் ஜி பதாரே ஹே, ஜின்ஹோனே சாக்கார் பாபா கி பால்னா லி ஹே. சாக்கார் பாபா கி பால்னா சே வோ சக்திசாலி பனே, இன்ஜினியர் ஆர் சயின்டிஸ்ட் விங் கோ ஆப் ராஷ்ட்ரிய சயோஜக் கே ரூப் மே காரியரத் பி ஹே. வர்த்தமான சமய ஜான் சரோவர் மே அப்னி சேவாய் தேதே ஹே. டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆதி ஆப்னே பஹத் சுச்சாரூ ரூப் சே சேவாய் தி ஹே. பிரதூஷன் முக்த் பனானே கே லியே குச் அபியான் பி ஆப்னே சலாய் ஹுயே ஹே. ஆர் மே ஜாதா சமய ந லேதே ஹுயே மோஹன் பாய் ஜி கா ஸ்வாகத் கர்த்தி ஹூ, ஆர் உன்சே நம்ர அனுரோத் கர்த்தி ஹூ கி ஆப் அப்னா பாபா கே அந்திம் தினோ மே ஆப் பாபா கே அங்க சங்க ரஹே, தோ ஆப்னே பாபா கி வோ ஸ்திதி தேகி தோ ஹம் சபி கோ அனுபவ சுனாயங்கே. மோஹன் பாய் ஜி,
ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. சமக்ர சிருஷ்டி கே இத்திஹாஸ் மே ஏக் ஹி ஆத்மா ஐசி ஹே, ஹமாரே மீட்டே பிரஜாபிதா ப்ரஹ்மா பாபா, ஜோ அபி தக் அப்னி சம்பூர்ண கர்மாதீத அவஸ்தா கோ ப்ராப்த் கர் ஹம் சப் கா சூக்ஷம் வதன் மே இன்தஜார் கர் ரஹே, ஆர் இஸ் ஸ்ருஷ்டி சக்ர மே வைசே தோ பஹுத் அநேக ஆத்மாயே ஹே ஜின்ஹோனே சாக்கார் மாத பிதா பாப் தாதா கி பாலனா லி ஹே. உன்மே சே ஹமே பி ஐசா சௌபாக்யம் மிலா ஹே சாக்கார் பாபா கே அங் சங் ரஹனே கா. லேக்கின் சப்சே படா சௌபாக்ய ஜோ ஹம் சமஜ்தே ஹே, ஜோ ஹமே ப்ராப்த் ஹுவா ஹே, வே ஹே அப்னி ஆன்கோ சே பாபா கி அந்திம் சம்பூர்ண கர்மாதீத அவஸ்தா கோ தேக்னே கா. க்யோங்கி 17 ஆர் 18 ஜனவரி 1969 ஜப் பாபா நே சம்பூர்ண அப்னி அவஸ்தா கோ ப்ராப்த் கர் லியா தா, உஸ் சமய ஹமாரா மதுபன் ஆகமன் ஹுவா. வைசே தோ அநேகோ பார் சாக்கார் பாபா சே மிலே தே, லேக்கின் இன் அந்திம் தோ தினோ மே ஜோ பாபா கி கர்மாதீத அவஸ்தா ஃபரிஷ்தா ஸ்வரூப் அவ்யக்த ஸ்திதி இன் ஆன்கோ சே தேகி, உன்கோ ஹம் குச் ஆபஸ் மே ஷேயர் கர்னா சாத்தே ஹே, ஜிஸ்ஸே கி ஹம் சபி பி உஸ் ஸ்திதி கோ சஹஜ ஹி ப்ராப்த் கர் சகே. க்யோங்கி ஜோ பாத் தேகி ஹுயி ஹோதி ஹே, சுனி அனுபவ கி ஹுயி ஹோதி ஹே, உசே ஜீவன் மே தாரண கர்னா பஹுத் சஹஜ ஹோ ஜாதா ஹே. தோ பாபா நே யஹ ஸ்திதி கேசே ப்ராப்த் கி, ஹம் சப் நே பாபா கி ஜீவன் கஹானி சே படா ஹுவா ஹே கி பாபா நே டாயரி மே லிக் லிக் கர் பக்கா கியா ஹுவா தா. கியா கியா தா பக்கா? ஆத்மா கா, மே ஆத்மா ஹூ, ஜசோதா ஆத்மா ஹே, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जो बाबा की लौकिक पत्नी, बेटा, बेटी आदि आदि, और उसका स्वरूप बाबा ऐसा बन गए थे कि बाबा जिसको भी देखते थे वो आत्मा थोड़े समय के लिए जैसे बिल्कुल अशरीरी हो जाती थी। हम सब बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे हाथ चला देते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस जैसे ही बाबा ऐसे हाथ फैलाते थे चुंबकीय आकर्षण ऐसा होता था, बाबा की बाहों में हम सब खींचते हुए चले आते थे, और जैसे ही बाबा का स्पर्श हुआ तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। तो केवल बाबा ने लिखकर ही पक्का नहीं किया था, लेकिन इतना अभ्यास बाबा का पक्का था कि जिसको भी देखते थे भ्रकुटी में वो आत्मा तुरंत ही अशरीरी और विदेही हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद थोड़ा समय वो अनुभव बाबा की बाहों में करते थे, फिर बाबा ऐसे धीरे धीरे थपथप, आओ बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ मीठे बच्चे, आओ आओ, जैसे बाबा वापस शरीर में भी आवाहन करते थे। और फिर हम सब भी जैसे न चाहते भी अपने देह में जैसे अपने को वापस अनुभव करते थे, उसके बाद बाबा नाम पूछते थे, टोली खिलाते थे और प्रश्न उत्तर कुछ करके, फिर एक जाता था दूसरा आता था, उसको भी यही अनुभव होता था। तो हम सब भी इसी कर्मातीत अवस्था के राही हैं, तो एक तो हम ये चेक करते चले अपने को कि बाबा जो रोज रोज ये अभ्यास पक्का कराते हैं, मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, ऐसे ही जब हम भी किसी भी आत्मा को देखते हैं वो आत्मा भी अशरीरी स्थिति का अनुभव करती है, देह अभिमान से न्यारी हो जाती है। और ये एक दो ही नहीं, हर एक बाबा का एक एक बच्चा ऐसा अनुभव करता था। एक तो इस अभ्यास को हम अपने को देखते चले, पक्का करते चले, और जो बाबा का ये अभ्यास इतना पक्का हो गया था, ये भी सहज नहीं, बाबा ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। हमें याद है जब शुरू में हम लोग ज्ञान में 62 आदि में 61-62 में ज्ञान में आए, तब बाबा की मुरली चला करती थी, आप सब भी जो बहुत कुछ पुराने होंगे, कि बच्चे देखो मंशा में तूफान तो अंत तक आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, इससे विकर्म बहुत बड़ा बनता है और आत्मा कलुषित होती है। फिर धीरे धीरे 63-64-65 में बाबा कहे कि बच्चे मुख से भी अगर किसी को दुख दिया, कोई कड़वे शब्द निकले, दुख देने वाले शब्द निकले, तो दुखी होकर मरेंगे। तब बाबा कर्मणा से और वाचा की तरफ ले आए, और अंतिम दिनों में क्या देखा आश्चर्य सबसे बड़ा, जब खास 17-18 जनवरी को बाबा से मिले, तो उससे पहले हमें याद है जब 66-67 में बाबा से मिलते थे, बस दो कुछ बाबा के सम्मुख जाते थे और कोई शब्द प्रश्न पूछने की इच्छा होती थी, बाबा के सम्मुख गए, बस दो चार शब्द ही बोलते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। फिर बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा उसका समाधान कर दिया करते थे। लेकिन अंतिम दो दिनों में क्या देखा, बड़े गौर से सुनिएगा, कि 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा से लगभग 6-7 बार मिलना हुआ, क्योंकि मधुबन में और पार्टियां नहीं थी, और उस समय हम और हमारे लौकिक पिताजी हम आए हुए थे, बाबा से मिले और बड़ा आश्चर्य की मन में प्रश्न लेके जाते थे बाबा से, ये पूछेंगे, ये अवस्था की बात, ये सेवा की बात, ये प्रश्न का समाधान आदि आदि। और जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे बाबा दृष्टि देते थे, बस थोड़ा सा कुछ सेकंड दृष्टि दी, मन की बात तुरंत बाबा पढ़ लेते थे। और बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता था, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। और बाद में जब बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया और बाद में कुछ दिन बाद जब दादियों से ये पूछा कि दादी ये कैसे अनुभव होता था, बाबा बिना एक शब्द बोले भी बाबा पूरे मन की बात एकदम समझ जाते थे और कहते थे अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा समाधान। तो बड़ा अच्छा दादियों ने उत्तर दिया कि देखो, जब कोई आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसकी स्थिति मन जीते जगत जीत की हो जाती है। जिसने अपना मन जीत लिया उसने जगत जीत लिया, यानी जगत की सभी आत्माओं का मन जीत लिया। और किसके मन में क्या है, भले बाबा हमेशा कई बार साकार मुरली में कहते हैं कि बाबा ब्रह्मा बाबा जानी जाननहार नहीं है, और पहले से ये नहीं ले अनुभव भी करते थे, बाबा को अपनी बात बताया करते थे, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा बिल्कुल बाप समान शिव बाबा समान हो गए तो अंतिम दिनों में बाबा की स्थिति भी बिल्कुल जैसे शिव बाबा जानी जाननहार समान हो गई। और वो अनुभव करते थे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, मन के भाव पड़े, उसको बताया प्रश्न भी, उत्तर भी दिया समाधान, और फिर बाबा जैसे देह से न्यारे हो जाते थे। तो ये जो गायन है हमारा शास्त्रों में कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब जो गायन है गीता में भी कहा है मन मनाभव। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव होता था बाबा से। तो ऐसी अवस्था हमें भी धीरे 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 अपनी बनाते चलनी है। और ये अवस्था कैसे बनेगी, इसका बाबा ने बड़ा सहज एक उपाय बताया है, इच्छा मात्रम अविद्या हम होते चले। हमारे मन में जो संकल्प हैं, जो प्रश्न हैं, इच्छाएं हैं, उनकी भी धीरे धीरे अविद्या हो जाए। और जब ऐसी स्थिति होती चली जाती है, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होती, तो हम दूसरे की इच्छा को तुरंत ही पढ़ करके उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बाबा का अंतिम दो दिनों में कई बार अनुभव। और क्या देखा बाबा का, तीसरी बात, जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचेंगे, अब पहुंचते जा रहे हैं, अभी भी दादियों से भी ये अनुभव होता है। हमें याद है बड़ी दादी जी के सम्मुख भी अंतिम कुछ वर्षों में कई बार जाना जब होता था दादी के पास, बस दादी के सम्मुख बैठ जाते थे और कई बार दादी बात बात में, अच्छा क्या सोच रहे हो, नहीं दादी कुछ नहीं, नहीं नहीं अच्छा ये सोच रहे थे ना, और ऐसा एक्यूरेट आ जाता था कि वास्तव में जो मन में संकल्प चल रहा होता था दादी तुरंत उसको बता देते थे। तो उस दिन अंतिम दो दिनों में अनुभव किया, मैं सीधा 18 जनवरी के करीब आता हूँ, 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मॉर्निंग क्लास में बाबा आए। आप सब में जो पुराने हिस्ट्री हॉल देखा है आपने देखा है, तीन संदलियां वहां पड़ी रहती थीं और एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक पे मामा, और बीच की संदली खाली रहती थी। जो पार्टियां आती थी वो आके अपना अनुभव सुनाया करते थे, क्या पुरुषार्थ के लिए प्रेरणाएं लेकर के जा रहे हैं, वो बात बताया करते थे। और बाबा मामा उसमें करेक्शन किया करते थे और ऐड करते थे। और बाबा मामा के सानिध्य में ऐसा लगता था जैसे संसार का सारा सुख जैसे पा लिया है। तो 18 जनवरी को सुबह एज यूजुअल बाबा क्लास में आए और बाबा ने आके सबको शुरू में जैसे बाबा थोड़ा दृष्टि देते थे रिकॉर्ड की, साकार मुरली के जो रिकॉर्ड हैं वो हुआ करते थे, उसकी कुछ लाइन बचती थी, फिर बाबा का जैसे ऐसे कुछ गला साफ करने का से कुछ इशारा होता था। हमारे बहुत पुराने चंद्रास दादा होते थे, वो रिकॉर्ड बंद कर दिया करते थे और फिर सब लोग डायरी पेन लेके तैयार हो जाते थे, मुरली सुनाते लिखते थे। लेकिन उस दिन बाबा को कई बार हो कि हाँ अब बस योग पूरा करके जैसे बाबा मुरली चलाए, लेकिन फिर बाबा योग कराने बैठ जाते थे। और 18 जनवरी की सुबह अमृत जो मतलब मॉर्निंग क्लास होती है 7 बजे वाली, उस क्लास में बाबा ने पूरा 1.25 घंटे तक योग ही कराया, मुरली का एक शब्द भी नहीं सुनाया। पूरा बार बार बाबा आते थे, बस बाबा एकदम क्लास कराते थे। और फिर यही अनुभव हरेक को होता था कि बस अब बाबा गला थोड़ा साफ किया, शायद बाबा मुरली चलाएंगे, लेकिन फिर से बाबा योग कराते थे। उस दिन बाबा ने पूरा योग कराया, मुरली मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। और बच्चों को थोड़ा संकल्प उठा कि बाबा ने आज मुरली नहीं चलाई, लेकिन शायद वो ही यज्ञ इतिहास में पहली बार ऐसा है जैसा दादियां बताते हैं कि बाबा ने जब मुरली नहीं चलाई और पूरा योग कराया। उसके बाद बाबा बस बाहर गए और जैसा हम सब ने सुना है बाबा ने यीशु दादी आदि को कहा कि आज जितने भी पत्र लिखाने हो वो पत्र पूरे सारे लिखा लो। पहले तो ईमेल और ये सब होता नहीं था, तो पत्र सारे बाबा ने जितने पत्र पेंडिंग पड़े हुए थे पत्रों के उत्तर दिए। साथ ही साथ बाबा जो हमारा नक्की लेक के पास म्यूजियम है, वो म्यूजियम की बिल्डिंग का चल रहा था कई दिन से, उस बिल्डिंग को लेना है या नहीं लेना, सेवा में लगाना है, उस दिन ही बाबा ने वो भी क्लियर किया। और जितने बचे हुए काम थे सारे बाबा ने याद कर करके पूरे किए। और तो हमें भी ये आभास होगा जब हम भी अपनी कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट होंगे, क्योंकि कोई भी कार्य अगर रहा हुआ होगा और वो बुद्धि में अगर होगा तो वो अंत समय वो कार्य वो व्यक्ति वो संसाधन वो चीजें अपनी तरफ खींचेंगी। मन बुद्धि बार बार वहां जाएगा, इसलिए कोई भी कार्य हमारा पेंडिंग ना हो, ये प्रैक्टिकल बाबा ने उस दिन पूरा का पूरा दिखाया। एक भी कार्य बचा हुआ नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, रात्रि क्लास हमेशा मधुबन में भी 8:45-9 बजे रात्रि क्लास रात्रि को होती है, सब लोग जब भोजन आदि करते हैं, लेकिन उस दिन बाबा ने शाम को 7 बजे ही हमारे मुख्य एक जमुना प्रसाद भाई है उनको बुला के कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको बता दो सब भोजन आदि करके आ जाएं और सब लोग 7:30 बजे जैसे 7:45 के अंदर सब क्लास में पहुंच गए और बाबा भी आ गए। देखो कैसे आत्मा को आभास कर्मातीत अवस्था के जब निकट होती है तो पूरा का पूरा बाबा को आभास, जैसे ये था बाबा ने पूरा आए, पूरी बाबा ने क्लास कराई। आप सब जानते हैं बाबा को इतनी उम्र भी काफी थी, तो कई बार खांसी आती थी अक्सर करके, और उस दिन सुबह भी ये थोड़ा सा अनुभव किया था सबने। और अक्सर करके क्या होता था, बाबा के पास एक ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, वो ट्रांसलाइट का चित्र, और उसे देख करके जब बाबा को कई बार खांसी आती थी तो आंखें भी कई बार गीली जैसे हो जाते थे, हम सबको लगता था बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है जैसे, लेकिन थोड़ी देर में ही बाबा एकदम स्वस्थिति को इतनी पावरफुल कर लेते थे कि ये खांसी रूपी परिस्थिति पर तुरंत विजय प्राप्त कर लेते थे। अब बाबा कहते थे देखो बच्चे, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, बस नया शरीर होगा, नए तत्व होंगे, नई दुनिया होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, अभी तो पुराना शरीर है और खांसी है, ये तकलीफ है, और अब हम सब ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं, तो बाबा जैसे उस नई परिस्थिति, ये बाहर की परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से ऐसा काबू कर लेते थे कि थोड़ी देर में ही जैसे वो खांसी कहाँ गई पता ही नहीं चलता था। और देखो बच्चे, कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, विष्णु बनेगा, तुम सब बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे, सारा नया तत्वों से बना शरीर होगा, बस बाबा इतना खुशी में आ जाता था। और कई बार बाबा कहता था, आप सबने सुना है ना, बच्चे खुशी में क्या करो, खग्गिया मारो, सिंधी शब्द है, जानते हैं कैसे खग्गिया मारते हैं, बाबा कई बार करके दिखाते थे, बच्चे हम जाके ये बनेंगे, और ये ओ मैं जाके ऐसा बनूंगा विष्णु, ये ऐसा करके बाबा के चेहरे पर इतना खुशी दौड़ जाती थी, बिल्कुल बाल कृष्ण का सा रूप बाबा का लगता था, विष्णु कृष्ण। और कल जाके बस बच्चे कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति को पीछे कर दो, उस पर वो परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना हो पाए। तो इस तरह बाब ये एक हम बच्चों को भी अपने को चेक करते चलना है कि स्वस्थिति हमारी ऐसी हो कि कोई भी परिस्थिति देह की हो, संबंधों की हो, कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, वो परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें। और वो कब होगा, जब धीरे धीरे हम अपनी स्वस्थिति में ऐसे स्थित हो जाएंगे। और अंतिम दिन 18 जनवरी की रात्रि क्लास में यही आश्चर्य देखा, क्या देखा, उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। आप 18 जनवरी की पूरी मुरली सुनो जो टेप के अंदर है, एक बार भी बाबा को उस दिन खांसी नहीं आई। वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है, शरीर के सब कर्म भोगों के ऊपर वो जो हमारी स्थिति है वो कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। कोई भी कर्म भोग जो है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। और पूरा जो बाबा की इतनी मुरली चली लगभग 35-40 मिनट की, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, पूरा जैसे शरीर के सारे कर्म भोग बाबा ने चुकतू कर लिए, और बिल्कुल बाबा का वही बाल, बार बार बाबा के मुरली बाबा चलाते थे, बार बार जैसे बाल कृष्ण का सा रूप वो सामने बाबा का आता था। फिर बाबा ने मुरली चला के बाबा खड़े हुए, फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे, एक एक बच्चे को दृष्टि दी, और सामने बड़ी दादी बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी, बार बार बाबा की दृष्टि घूम के दादी की तरफ आती थी। तो बाबा ने एक एक बच्चे को शक्ति से भरपूर किया और उसके बाद दरवाजे पर जाके बाबा ने कहा, आप सब जानते हैं, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये बाबा के महावाक्य अभी भी टेप के अंदर भरे हुए हैं और दादियां बताते हैं बाबा ने पहले कभी भी ऐसा ये शब्द नहीं उच्चारे, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये भी इस बात का प्रतीक है जैसे कर्मातीत अवस्था का, कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसको आभास हो जाता है, बस अब इस शरीर में मेरा पार्ट पूरा हुआ और बाबा हम आपके पास अब आए कि आए। तभी तो बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे और बस फिर से बच्चों को दृष्टि देते हुए, नैनों से निहाल करते हुए, और फिर बाबा अपने कमरे की तरफ गए। और सब जानते हैं किस प्रकार से बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी दी। बाबा का एक अभ्यास बहुत पक्का था और जो बाबा चाहता है हम बच्चों को भी वो अभ्यास पक्का होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है आप बच्चों के सामने पेपर तो अनेक आते हैं, आएंगे, लेकिन अब अंत समय में दो पेपर सबके सामने विशेष आएंगे। कौन से दो पेपर? बाबा ने कहा एक पेपर है अपने शरीर का पेपर, अंतिम पेपर जो है ये अपने शरीर का पेपर है, और बस ये शरीर का पेपर बहुत इससे पार होने के लिए, पास होने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए कौन सा अभ्यास पक्का होना चाहिए? वो बाबा को भी बड़ा पक्का था, एक सेकंड में देह में आए, एक सेकंड में देह से न्यारे हो। जैसे अभी दादियों से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना मिलने का, पार्टी का, भाई मानो 10 बजे दिल्ली पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बम्बई पार्टी, 11 बजे कलकत्ता, मानो ऐसा, ऐसी साकार बाबा से भी मिलने का टाइम फिक्स होता था। लच्छू दादी होते थे वो टाइम सबको दिया होता था, ब्राह्मणी जाती थी अपने समय पर, और बाबा अक्सर करके मधुबन में 3 जगह में से किसी जगह मिला करते थे। जब 2-3 लोग होते थे, 3-4 तो बाबा अपने कमरे में मिलते थे। बाबा का कमरा देखा है ना, तब उस समय इतना बड़ा कमरा नहीं था, जहां तक बाबा का पलंग पड़ा हुआ है बस उतना ही बड़ा कमरा, बहुत छोटा, और पीछे से बैक से उसका गेट होता था, तो उसमें आ ही सकते थे, 3-4 लोग से ज्यादा आ ही नहीं सकते थे। तो जब छोटे कम लोग होते थे बाबा वहां मिलते थे, थोड़े ज्यादा होते थे 8-10 लोग होते थे तो झोपड़ी में मिला करते थे, जो बाबा की झोपड़ी है। और अगर पार्टी थोड़ी बड़ी होती थी, पहले तो 15-20 की पार्टी बहुत बड़ी माना जाती थी उस समय, तो बस तब बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो ये 3 जगह बाबा की मुकर्रर थी जो बाबा पार्टियों से मिला करते थे। तो जहां पर भी पार्टी का टाइम होता था बस बाबा वहां पर पहले से विराजमान होते थे। टीचर जाती थी ब्राह्मणी, देखती थी बाबा बैठे हैं, आंख भी खुली हुई है लेकिन जैसे न्यारे हैं। सामने भी जाके टीचर खड़ी हो जाती थी बाबा को, फिर भी जैसे एकदम देह से न्यारे। और वो कहती थी बाबा बाबा मैं पार्टी फलानी पार्टी लाई, तो कई बार बाबा को जैसे आश्चर्य होता था, कोई ध्यान में नहीं होते थे, साक्षात्कार नहीं, लेकिन इतना देह से न्यारा होने का पक्का अभ्यास कि कई बार हम लोग महसूस करते थे जैसे जर्क सा लगा, आंख खुली हुई है, कोई ध्यान में नहीं है, लेकिन देह से न्यारे जैसे। फिर बाबा जैसे देह में, अच्छा बच्ची पार्टी ले आए ये, हाँ हाँ बुलाओ। फिर एक एक बच्चे से बाबा मिलते थे, टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, वो पार्टी जाती थी, दूसरी पार्टी के आने का टाइम होता था, 5-10 मिनट बीच में होते थे, फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे। यानी एक एक मिनट को कैसे सफल करना है वो प्रत्यक्ष बाबा से देखने को मिलता था। पार्टी गई, थोड़ा टाइम भी है, 5-7 मिनट भी, फिर बाबा जैसे देह से न्यारे हो गए, फिर दूसरी पार्टी वाली ब्राह्मणी आती थी वो मिलती थी, फिर बाबा उस ग्रुप से मिला करते थे। तो देह में आने का अभ्यास और देह से न्यारे होने का अभ्यास, ये अभ्यास बाबा को इतना पक्का था। और बाबा चाहता है हम बच्चों को भी ये अभ्यास बहुत पक्का होना चाहिए कि जब चाहें पार्ट बजाने के लिए देह में आए, अपना पार्ट प्ले किया और फिर देह से न्यारे हो गए। जो बाबा ने बताया है सूक्ष्म वतन, परम धाम, नई दुनिया, जहां जहां बुद्धि का चक्कर लगाना है वहां गए, फिर जब चाहे देह में आए, पार्ट बजाया और फिर देह से न्यारे हो गए। तो एक ये साधन है अंतिम पेपर में पास होने का, जो देह का पेपर, क्योंकि अंतिम पेपर के समय ना ये शरीर के द्वारा सारे रहे सहे हिसाब किताब वो सब इस शरीर के द्वारा ही चुकत होने, अति दुख, कष्ट, व्याधि, दर्द होगा लेकिन दर्द का आभास न हो, उस दर्द में तड़पे नहीं, वो तब होगा जब देह से न्यारा होने का अभ्यास होगा। तो ये प्रैक्टिकल, इतनी उम्र बाबा की, इतनी मधुबन में सर्दी, ऐसा वातावरण, फिर भी बाबा जैसे देह से न्यारा होकर के कैसे ये अभ्यास कराता था। एक तो बाबा ने ये पेपर बताया, ये पेपर हर बच्चे के सामने, अंतिम दो पेपर में एक ये पेपर है। दूसरा पेपर कौन सा? दूसरा पेपर बाबा ने कहा है परिवार का पेपर, अपना ब्राह्मण परिवार का पेपर। अभी बाहर की दुनिया से तो जैसे हमारा जीवन कट ऑफ हो गया, वो अगर उनसे, उनमें हम कोई कमी कमजोरी देखते हैं, कोई विकारी बात देखते हैं, तो हमें होता है कोई बात नहीं, अज्ञानी है, उनका जीवन है। लेकिन जब अपने ब्राह्मण परिवार में कोई बहुत पुराना होता है, बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये पूरा किंगडम स्थापन हो रही है, इसीलिए इसमें सब प्रकार के मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, महाराजा महारानी भी, राजा रानी और शाही परिवार वाले, फिर साधारण प्रजा भी, और सब प्रकार के बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो इसीलिए जब सब प्रकार के बच्चे हैं तो वैसा उनका पुरुषार्थ भी होगा यहाँ पर, और अपने पुरुषार्थ के अनुसार कईयों में ये देखने को मिलेगा, इतने पुराने, उनके अंदर भी अभी तक ये कमी, ये कमजोरी, और बस इससे नयों की भी अवस्था कई कोई की डावाडोल हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा है जब ऐसी स्थिति हो, जब बहुत प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे, बहुत पेपर आएंगे, अंत में अनेक हलचलें होंगी, उन हलचलों में फिर बहुत जैसे झाड़ हिलेगा, ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला हुआ है, पेपर आएगा उस समय हमें क्या, उस पेपर से कैसे पास होना है, उसकी भी विधि बाबा ने बताई है। पहली बात एक तो हम ये समझें जो बाबा ने कहा है, याद है बाबा के महावाक्य याद करो कि मेरा जो लास्ट में लास्ट बच्चा भी है वो आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़े बड़े आज की दुनिया के जो नामी ग्रामी गाए हुए हैं उनसे भी वो महान है जो मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा है। क्यों महान है? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, ईश्वर ने, हमने भगवान को नहीं पाया है, भगवान ने हमें चुना है। तो हम भगवान के चुने हुए रतन हैं, बच्चे हैं सदा इस नशे में रहेंगे और अपने को तो नशे में रखें लेकिन दूसरे को भी हम इसी दृष्टि से देखें, किसी में अगर कोई कमी कमजोरी है, आज वर्तमान में उसे वो कमी कमजोरी दिख रही है तो हम देखें नहीं, भले आज उस किसी बच्चे में ये कमजोरी है लेकिन भगवान ने उसे चुना है और ईश्वर के द्वारा उसके द्वारा ईश्वर को कोई बहुत महान कार्य समय पर कराना है, इस कारण से ये बच्चे का आज भले वो कमजोरी का पार्ट चल रहा है लेकिन ये भगवान का सिलेक्शन किया हुआ बच्चा है और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये नशे में हम खुद तो रहें, अपने साथ साथ हम एक एक बच्चे को, ब्राह्मण बच्चे को देखें, ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है और उस दृष्टि से देखेंगे तो किसी की कमी कमजोरी कोई नजर ही नहीं आएगी और अगर होगी उसमें तो हमारे अंदर जब हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा तो क्या होगा, दृष्टिकोण बदल जाने से पूरी हमारी ये सृष्टि ही बदल जाएगी, एक से भी हमारी कोई संबंध में कोई तनाव कटुता और वो सब नहीं रहेगी। एक हम इस बात को सदा याद रखें हर बच्चे को देखते हुए कि ये भगवान का चुना हुआ रतन है और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि वर्तमान समय भले उसका ये कमी कमजोरी का पार्ट चल रहा है लेकिन हम अपना ये पार्ट भी करें, उसको सकाश दें, शक्ति दें, उसको सहयोग दें उस परिस्थिति से उबरने के लिए जिससे वो फिर से अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाए। और जहां वैरायटी होती है, बाबा ने कहा ये सृष्टि नाटक ड्रामा बहुत वैरायटी का है, भगवान को भी ये बहुत बहुत अति प्रिय है, तो जब भगवान को ये नाटक अति प्रिय है तो हम और आप कभी भी ये संकल्प क्यों करें कि बाबा आपने ऐसा पार्ट मेरा क्यों बनाया, ये नहीं होना चाहिए था, क्या ऐसा ही कलप कलप होगा, नहीं, ये भगवान को अति प्रिय है तो मुझे भी अति प्रिय है, मैं सदा इस नशे में रहूं। ये नाटक अति प्रिय है, भगवान का बनाया हुआ है और आज वो आत्मा कुछ अप्स एंड डाउन्स में से पास हो रही है लेकिन फिर समय आएगा वो आत्मा ठीक हो जाएगी और नाटक भी, लौकिक दुनिया में तो फिल्मों के नाटक के सब अनुभवी होंगे ना, जितनी वैरायटी होती है नाटक में भी तभी अच्छा लगता है, फिल्म में भी हीरो हीरोइन होते हैं, कॉमेडियन होता है, नाचने गाने वाले होते हैं, विलेन भी होता है जो निगेटिव पार्ट बजाता है आदि आदि, तो ऐसे ही हमारे भी ये पूरे सृष्टि नाटक इसमें जो चल रहा है सब प्रकार के एक एक बच्चे हैं, इसलिए किसी का भी पार्ट देख के मुझे ऊपर नीचे नहीं होना है, बस इस बात को हम सदा पक्का करके चले क्योंकि ये दो पेपर बाबा ने बताया अभी हर बच्चे के सामने, ये दो पेपर विशाल रूप में हर बच्चे के सामने आएंगे, इसलिए बाबा को ये बाबा चाहता है हर बच्चा इस दृष्टिकोण से देखे और इसीलिए बाबा कहता है, एक शब्द बाबा ने दिया है दृष्टि के ऊपर, बाबा हमेशा कहता है सिविल बनाओ, और दृष्टि के लिए बाबा ने बड़ा सहज बताई हुई है ये दृष्टि भी कैसी, जो पास विद ऑनर आत्माएं होंगी उनकी दृष्टि 100% सिविल बन जाएगी, हर एक को ये सिविल दृष्टि बनानी है तो उसके लिए बाबा ने बहुत सहज ये पांच बातें किस प्रकार से हम, क्योंकि जब हम साक्षी दृष्टा होकर के देखेंगे तो फिर किसी का भी पार्ट हमें हलचल में नहीं लाएगा, कोई परिस्थिति हलचल में नहीं लाएगी। तो एक तो बाबा ने कहा अपने को क्या समझो, मैं दृष्टा हूं, देखो साक्षी दृष्टि नहीं कहा बाबा ने, साक्षी दृष्टा, तो मैं आत्मा दृष्टा, ये शरीर की खिड़कियां हैं, आंखें हैं। आंख खुद नहीं देखती, आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आंख के द्वारा आत्मा देखती है। तो इसलिए साक्षी दृष्टा होकर के मुझे देखना है और चलना है। एक है दृष्टा, दूसरी चीज है दृष्टि। तो मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा देख रही हूं। तीसरी चीज है दृश्य, जो भी बाहर हम पार्ट देख रहे हैं, पांच प्रकृति के पांच तत्वों का, आत्माओं का खेल देख रहे हैं, वो सब है दृश्य। तो मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूं। इस एटीट्यूड से जब ये दृश्य होगा तो और क्या होगा, इस दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे, चौथी चीज है दृष्टिकोण, ये सब दृष्टि से ही कनेक्टेड है और यही चीज हमें साक्षी दृष्टा बनाएगी। मैं दृष्टा इन दृष्टि के द्वारा ये सारा दृश्य देख रही हूं और मुझे ऐसा दृष्टिकोण अपना बनाना है। तो क्या होगा, पांचवी बात, तभी इतिहास में हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे। द्वापर युग से जो भी इतिहास लिखा जाएगा, हम बच्चों का ही तो इतिहास है पूरा भक्ति मार्ग का, तो वो दृष्टांत बन जाएंगे सदा काल के लिए। अगर हमारा जीवन इस प्रकार से, सारा महत्व ही दृष्टि का है कि मैं जो है दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूं और दृष्टांत मेरा लिखा जा रहा है, अब मेरे जीवन का यही दृष्टिकोण रहे। तो इससे क्या होगा कि पूरा हमारा जीवन का संपूर्ण, और बाबा पल पल में इतनी बड़ी बड़ी बात हो जाती थी, कई घटनाएं इतनी बड़ी हो जाती थी, बस बाबा को आके बताती थी कोई ब्राह्मणी, कोई भाई, कोई बहन, अच्छा बच्चे चलो ड्राम, और सीधा ड्रामा के पत्ते पर साक्षी दृष्टा होकर के बाबा जैसे उस बात को पार कर देते। प्रैक्टिकल में कितनी बार ये देखा, हमें याद है एक बार जब कलकत्ता में प्रदर्शनी हो रही थी, वहां हमारे जो अनन्य मित्र हैं जानते आर्य समाजी, उन्होंने आग लगा दी थी, पंडाल पूरा जल गया, प्रदर्शनी जल गई। तो बताया हमारे जो बहुत मुख्य भाई वकील होते थे चार पांच, और ये कानपुर के, उन्होंने बाबा को कहा, बाबा हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमें उन पर केस करना चाहिए और ये केस हम 100% जीतेंगे, कोई वजह नहीं कि हार जाए। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे वो अज्ञानी है, उन्हें क्या मालूम उन्होंने क्या किया है, बाप कभी भी बच्चे के ऊपर केस नहीं कर सकता। और कितना महान दृष्टिकोण, सारे के सारे यज्ञ के बड़े बड़े भाई लोग, सब लोग हमने अपनी आंखों से देखा, कितना प्रेशर आई, सब कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्चे वो बेचारे अज्ञानी, हाँ आगे के लिए हमें सावधानी लेनी चाहिए, भाई इंश्योरेंस करा दो और सावधानी रखो, लेकिन आगे ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन बाप कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता। तो यही दृष्टिकोण हमारा हो, जो कहने की बात ना हो कि मतलब बदला लेने की भावना जरा सी भी रिंचक मात्र भी ना हो, ये प्रैक्टिकल में बाबा में देखने में आती थी। भले स्लोगन लिख रहा है बदला ना लो, बदल करके दिखाओ, लेकिन फिर भी हम बच्चों के अंदर कई बार ऐसी, किसी ने हमारे साथ बहुत निगेटिव बातें की हैं और हमारे प्रति उसका बड़ा दृष्टिकोण निगेटिव होता है, तो फिर हम लोगों के मन में आता है, न चाहते हुए भी कई बार ऐसी भावना आ जाती है, अच्छा हम भी इसे ऐसा दिखाएं। लेकिन बाबा में कितनी घटनाएं ऐसी हैं, समय के अभाव में उतना ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एक घटना, नम्रता का स्वभाव। मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक बार, हाँ हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ही थे, तभी आए हुए थे मधुबन में, 1964-65 की बात होगी, तो बाहर से गेट से कुछ साधु सन्यासी गुजर रहे थे। एक बड़ा साधु था, उसका बड़ा सिंहासन टाइप भी था और मृगछाला जैसी होती है। चार पांच जा रहे थे, वो गेट के पास रुके और फिर उन्होंने, तब भूरी दादी होती थी एक गेट पे पहरे पर, उन्होंने कहा हमें आपके गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने कहा भाई अभी दोपहर का ऐसे 3-3:30 का समय है, आप थोड़ी देर के बाद आओ, 5 बजे मिला देते हैं आपको, या कल सुबह आओ। लेकिन वो तो अपने नशे में थे कि नहीं हमें मिलना है, क्योंकि हमने सुना है आपके गुरुजी यानी ब्रह्मा बाबा बड़ा शास्त्रों के विपरीत ज्ञान देते हैं, और गीता कृष्ण ने नहीं गाई और आत्मा जो है 84 लाख योनि में नहीं जाती, भगवान सर्वव्यापी नहीं, आदि आदि, और हमें उनसे शास्त्रार्थ करना है। तो बहन ने बहुत समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझे, तो वो अंदर आई, बाबा के पास आके कहा कि बाबा ऐसे वो आए हैं, मिलना चाहते हैं। बाबा, हाँ हाँ बच्ची, बाबा मिलेगा अभी। देखो एवर रेडी का जो बाबा कहते हैं, इतना पूरा टाइट दिनचर्या बाबा की रहती थी, फिर भी बाबा तुरंत ही 5 मिनट में उन्हें बैठाओ बच्चे हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में उन्हें बैठाया, हम भी पीछे की तरफ बैठे हुए थे, देखा हमने, और बाबा आए और बस वो सब तो नीचे बैठ गए। बाबा आए, एक को बड़े प्यार से दृष्टि दी, अरे बच्चे जो उनका मुख्य था, नीचे क्यों बैठे हो, आओ आओ यहाँ बाबा की संदली पर बैठो। तो वो तो अहम में था, नश नहीं नहीं वो आपकी संदली है, आपकी गुरु वो जो पीठ जो होते हैं ना वो है, आप वहाँ बैठो, हम यहाँ ठीक है। नहीं नहीं बच्चे, आप लोगों ने देखो भारत को थामा है, ये तो देखो गृहस्थी था अपने लिए बाबा, ये अपवित्र गृहस्थी, आप लोग बाल ब्रह्मचारी हो, कितने महान हो, आप बैठो। फिर भी वो हिचके, बाबा ने बड़े प्यार से जो उनका मुख्य था उसका वहां से उठाया पकड़ा, और वो अच्छा खासा मोटा ताजा, और बाबा ने बड़े प्रेम से उठा के उसे संदली पर बैठा दिया और बाबा सामने बैठ गए। कितनी नम्रता देखो, ऐसा कोई गुरु होगा जो अपनी गद्दी पर और वहां पर दूसरों को बिठाए और खुद जैसे इतने नम्रता से बिल्कुल सामने बैठ जाए। और इसी चीज ने ही उनका दिल जीत लिया, जो इतना भरे हुए आए थे, हम ये शास्त्रार्थ करेंगे, ये बोलेंगे, ये ऐसा करेंगे, बस वो सब बैठ गए। और वहां फिर बाबा ने पहले हालचाल पूछे, हाँ बच्चे आए, कोई तकलीफ तो नहीं, ये है पानी वानी पूछा सब करके, हाँ बच्चे बोलो कैसे आना हुआ। अब वो एक सन्यासी दूसरे की तरफ देखे, दूसरा तीसरे की तरफ देखे, तुम पूछो, तीसरा चौथे की तरफ, और उनका दिल बाबा ने इतना जीत लिया कि बिल्कुल जो शास्त्रार्थ करने और ऐसे विरोधी होके आए थे, फिर उन्हीं में से फिर एक ने बड़े प्रेम से बोला, बाबा अपने आप ही मुख से निकल जाता था, बाबा हमने सुना है कि भाई आप जो ज्ञान देते हैं वो ऐसा शास्त्रों के विपरीत है। प्रेम से जो सोच रहे थे हम लोग की इतना लड़ने के एम से आए हैं, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये खुद भी गीता पढ़ता था, शास्त्रार्थ शास्त्र पढ़ता था, अब इसमें आकर के वो शिव बाबा आके ज्ञान सुना जाता है, और इसने भी इतने गुरु किए सब किए, और बड़ा प्यार से बाबा ने निखालिस भाव से ऐसा उन्हें बताया कि बस उन्होंने दूसरा प्रश्न नहीं किया, बस खड़े होके बाबा को वंदना करके, बाबा के सर झुका करके, और वो बाइज्जत वहां से चले गए। तो बाबा हम बच्चों से भी ये चाहता है कि ऐसे हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए हम अपने को उन चीजों में उलझाएं नहीं, योगदान करें दृष्टि से, प्यार से, नम्रता से, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से, उस परिस्थिति को पार करके और फिर उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करें। ये खास देखा, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं अंत में बाबा का एक प्रकृति जीत का दृश्य दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे बाबा मन जीते जगत जीत, ये तो बना, लेकिन प्रकृति जीत भी बाबा कैसे बन गया, तो 18 जनवरी की रात्रि क्लास बाबा छुट्टी लेके विदा करके कमरे में गए और वहां जाके बाबा ने देह त्याग किया। और उसके बाद बाबा का वहां पर 18 जनवरी की सारी रात शरीर रखा रहा, 19 तारीख का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी जी, जिनकी स्मृति में मनमोहनी वन बना है, वो टूर पर गए हुए थे, उनका भी सब वेट कर रहे थे और सब बच्चों के टेलीग्राम टेलीफोन आ रहे थे, आप रोको हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इसलिए 18 तारीख का शरीर छोड़ा हुआ, 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन दवाई नहीं लगाई गई, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही सफेद श्वेत चमकता रहा, नहीं तो अक्सर करके शरीर काला पड़ जाता है। और दूसरी बात, बाबा का शरीर ऐसा चमकता हुआ था, और जब हम लोगों ने स्नान भी कराया 21 तारीख को दोपहर के बाद, वरिष्ठ सब और जो भाई लोग वगैरह, तो बाबा के शरीर में काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी, काफी हद तक। ऐसा होता नहीं है, हमने बहुत डॉक्टरों से पूछा, मेडिकल स्पेशलिस्ट से पूछा, ये कहते हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और आज की दुनिया में वास्तव में प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति के अंदर जितना भी ये सब है, पांच तत्व जो है, ये पांच तत्व सब तमो प्रधान बन गए हैं। लेकिन बाबा ने इस पांच तत्वों से बने हुए शरीर को भी इतना पावन बना लिया था कि वो शरीर ने भी अंत समय तक साथ दिया, बिल्कुल चमकता रहा गोरा, और शरीर के अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी रही। यह है प्रकृति जीत का प्रतीक, साधारण बात नहीं है, जिसे मेडिकल साइंस भी, बाबा ने कहा ऐसे ऐसे वंडर होंगे बच्चे देखेंगे कि आज के विज्ञान, तभी तो विज्ञान के ऊपर ज्ञान की ये जीत, साइलेंस की साइंस के ऊपर जीत का प्रतीक, कोई ना कोई तो बातें होंगी ना, ये तो प्रत्यक्ष हमारा आंखों से देखा हुआ है। तो ऐसा, और इसके लिए बड़ा सहज बात है, हम सबको भी प्रकृति जीत बनना है, तो प्रकृति जीत बनने के लिए हमें क्या करना है, मैं नटशेल में एक दो बातें जो हैं वो आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। क्योंकि प्रकृति जीत हम सबको बनना है, माया जीत जगत जीत के साथ प्रकृति जीत, क्योंकि जगत के अंदर तो प्रकृति भी आ जाती है, ये पांच तत्व भी आ जाते हैं। तो प्रकृति जीत में, यहाँ पर तो देखो सब महाराष्ट्र बंबई वाले बैठे हुए हैं, और बंबई के लिए तो बाबा ने विशेष कुछ महावाक्य भी उचारे हुए हैं। बंबई का परिवर्तन विशेष किस चीज से होगा, कौन से तत्व का विशेष महत्व होगा, जल तत्व का बंबई में, और ऐसे ही बंबई को सुखाया है और जल में उस समाना है। और अभी विज्ञान के द्वारा हम सब लोग अभियानों में बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर आदि आदि, ये सब कारण निमित्त बन रहे हैं, और जिसके कारण से समुद्र का सतह आदि बढ़ रही है, ये सब तो वैज्ञानिक कारण है। लेकिन आध्यात्मिक कारण, हम जल तत्व से मित्रता कर लें, दोस्ती कर लें, ये पांचों तत्वों से अगर हमारी मित्रता होगी तो ये जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, ये तत्व जो है हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा है, अंत समय जब ऐसी परिस्थिति आएगी, आपके पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, ऑटोमेटिकली ये तत्व आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। तो तत्व से मित्रता कैसे कर लें, जल तत्व में सबसे बड़ा कौन सा गुण होता है, कौन सा होता है, शीतलता तो होता ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी का, एडजस्टमेंट का। जैसे ये गिलास है ना, गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। कटोरी में लो, कटोरी में। चम्मच में लो, चम्मच में। थाली में लो, थाली में। हर जगह सेट हो जाता है। ऐसे ही हमें अपने को देखना है कि मुझे भी अपना संस्कार ऐसा बनाना है कि हर आत्मा के साथ मैं एडजस्ट होके चल सकूं। कहीं से भी ऐसा ना हो कि इनके साथ तो सेट होकर चलना बड़ा आसान है, इनके साथ मुश्किल है। नहीं, जल तत्व के अगर मुझे पूरा सहयोग लेना है कि जल तत्व मेरे दुख अशांति मृत्यु का कारण न बने, अंत समय भले बहुत सुनामी होगी, बहुत फ्लड आएंगे, समुद्र की बहुत सतह बढ़ेगी, लेकिन हमारा वॉइसलेस कनेक्शन अगर बाबा के साथ होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा टचिंग होगी, पैर उधर बढ़ेंगे जहां पर हमारी सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, और ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एक हर एक में जल तत्वों में बहुत गुण है, लेकिन मैं यहां पर केवल एक दो एक गुण ही लेता हूं। ऐसे ही जल में शीतलता का गुण होता है, फ्लो का गुण होता है, जल हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती है, वो आगे ही आगे सदा बढ़ता रहता है। जब भी जल रुक जाता है तो क्या होता है, मक्खी मच्छर बदबू पैदा हो जाएगी। ऐसे ही अगर कहीं पर हम देखते हैं कि हमारा अगर ईर्ष्या अहंकार क्रोध बदले की भावना नेगेटिविटी ये सब चीजें अगर हैं, तो इसका मतलब ये सब मक्खी मच्छर जैसे अवगुण हैं, और इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रेस रुक गई है। तो हमें अपने अंदर ये देखते चलना है, जल का एक एक गुण हम अपने अंदर देखेंगे, धारण करते चलेंगे तो जल को हम अपना मित्र बना लेंगे, तो जल हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बनेगा। ऐसे पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, सहनशीलता तो होता ही है, साथ साथ पृथ्वी दाता है। सबसे बड़ा गुण पृथ्वी का, धरती माता बोलते हैं, दातापन का गुण है पृथ्वी का। धरती हर चीज को देती है, पानी देखो, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, अन्न है, गेहूं अनाज फल फूल सब चीज धरती से मिलता है, दाता है पृथ्वी। और पृथ्वी के द्वारा कौन सा तत्व, तो ये पृथ्वी तत्व जो है किस रूप में विनाश का कारण बनेगा, सब जानते हैं, अर्थक्वेक, भूचाल जो आता है, धरती हिलती है, धरती कंप होता है ना, तो वो विनाश का एक बहुत बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। और अगर हम भी धरती की तरह हमने अपने अंदर ये गुण धारण किया हुआ होगा, कौन सा, दातापन का, जो हम देखते हैं दादियों के सम्मुख, बाबा के सम्मुख हम देखते थे, जो भी आता था कभी खाली हाथ नहीं जाता था। कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, बस बाबा के सम्मुख गए, शक्ति का, शांति का, पवित्रता का, गुणों का, उन सब का एहसास होता था। दादियों के सम्मुख जाते थे, कई बार हम कहते थे दादी आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा, दादी प्रकाशमणि जी को डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर कहता था, दादी कहती है नहीं बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कोई अगर बात होती है मैं तो बस अपने को शरीर से बिल्कुल डिटैच कर लेती हूँ, ये शरीर जैसे धरती है, बस इससे डिटैच कर लो, कुछ भी होगा महसूस करने वाली तो आत्मा है ना। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि धरती कंप हो, कोई भी बहुत भूचाल आए, चारों तरफ विनाशकारी हाहाकार सब मचा हुआ हो, लेकिन मेरा बाल बांका ना हो, क्यों, ये जरूरी किस लिए है कि जो गायन है अंतमति सोगति का, अगर अंत में इन तत्वों के कारण मैंने शरीर छोड़ा, सुनामी के कारण छोड़ा, हाहाकार मचाए, धरती के कारण शरीर छोड़ा, साइक्लोन आया उसके कारण अगर छोड़ा, तो वो अंतमते सो गति तो नहीं होगी, हाहाकार मचा होगा, दुख होगा, अशांति होगी, शरीर में कष्ट होगा, और इन सब के कारण अगर शरीर छोड़ दिया तो ये तो अंतमते सो सदगति तो नहीं हुई। तो इस एक तरफ ये अति हलचल होगी, बाबा ने कहा, और दूसरी तरफ जो मेरे बच्चे होंगे जिन्होंने अवस्थाएं बनाई हुई होंगी, बाहर अति हलचल होगी, उन सब में वो सब अति अचल होंगे। तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है, बाहर बहुत हलचल होगी लेकिन हम अंदर अति अचल स्थिति में होंगे, तो क्या होगा, बाहर की हलचल हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकती, वो हमारी मृत्यु का, दुख का, अशांति का कारण नहीं बन सकती बिल्कुल। और वो तब होगा जब इन तत्वों का गुण हमने अपने अंदर धारण किया होगा, इस तत्वों को मित्र बनाया होगा, क्योंकि जो मित्र होता है मित्र की हमेशा रक्षा करता है, मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता, हमेशा विपरीत परिस्थिति में, प्रॉब्लम्स में मित्र मित्र की मदद करता है, रक्षा करता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं धरती हमारी रक्षा करे, जल रक्षा करे, अग्नि वायु आकाश जितने तत्व हैं, तो इनके जो जो गुण हैं उन गुणों को हमें अपने अंदर आत्मसात करना होगा, वो धारण करना होगा एक एक गुण, तो क्या होगा, ये धरती भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। तो इसीलिए धरती की तरह हम क्या करें, दाता बने। अब स्थूल चीजों का तो दाता लिमिट हो सकती है, भाई किसी को पैसा देना है, अन्न देना है, कपड़ा देना है, लिमिट। लेकिन हम ऐसे दाता बने, कोई भी हमारे सम्मुख आए, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, सहयोग, सद्भावना, उनको इतना नम्रता, कोऑपरेशन, बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार को अभी सहयोग की आवश्यकता है, तो इसलिए ये सब चीजों में तो कोई खर्चा होता नहीं, इसलिए जितना जितना हम ये सब दाता बन करके धरती की तरह देते चलेंगे, तो इसका मतलब हमने धरती को अपना मित्र बना लिया, पृथ्वी को, और पृथ्वी में जितनी भी हलचल होगी वो हलचल हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बन सकती। ऐसे ही और तीसरा तत्व कौन सा है, तीसरा तत्व है वायु। धरती जैसे हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, वायु हल्की होती हर चीज को ऊपर उठाती है, और ये वायु तत्व भी विनाश का बहुत बहुत बड़ा कारण है। देखा होगा समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, वो सब वायु के साइक्लोन, इतना सारा टॉर्नेडोज आए हैं, आते हैं, साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, आदि आदि, इतना बड़ा अमेरिका देश, यूरोप, सब प्रकार से समृद्ध, लेकिन प्रकृति के तत्वों के कारण वो भी हताश होकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तत्वों का उन्होंने सबने बहुत दोहन किया है। तो वायु तत्व के लिए हमें कौन सा वायु का गुण धारण करना है, कौन सा गुण, वायु का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, हल्कापन का, प्राण वायु। देखो वायु के बिना हम कुछ सेकंड भी नहीं जी सकते, कुछ मिनट भी, जल के बिना रह सकते हैं कई दिन तक, भोजन के बिना कई दिन तक रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना आप जरा सांस रोको, देखो कुछ सेकंड से ज्यादा, मिनटों में भी नहीं जा पाएंगे ज्यादा, एकदम हलचल होने लगती है, ये प्राण वायु बोला है। तो इसीलिए ब्राह्मणों की प्राण वायु कौन सी है, हम सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं ना, हमारी प्राण वायु कौन सी है, बाबा ने कहा उमंग और उत्साह, जिसे बाबा कहता है खुशी। हमें सदा ही उमंग, उत्साह, खुशी, और जितनी खुशी होगी उतनी हमारी क्रिएटिविटी होगी, जो बाबा कहता नवीनता, नई नई चीजें बनाते चले, सेवा के साधन होते चले, हमारे पुरुषार्थ में नवीनता होती चले, और वो सब तब होती चलेगी जब हमारे अंदर हल्कापन होगा। वायु का हमने हल्कापन का गुण धारण किया होगा, जितना हम हल्के होंगे कोई परिस्थिति आए हमें भारी ना कर सके। परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, बाबा ने कहा ऐसा नहीं, जब पेपर आता है तभी तो विद्यार्थी पास हो गए नेक्स्ट क्लास में चढ़ता है, बाबा ने कहा है। इसीलिए पेपर आएंगे, लेकिन ये पेपर हमें भारी ना करते। हम हल्के रहें तो इसका मतलब वायु का हमने गुण धारण कर लिया, और वो हल्के रहने का साधन तभी है खुशी। और उसका पेपर में हम हल्के रहेंगे, जितना आगे बढ़ते रहेंगे और जितना आगे बढ़ते रहेंगे हल्के रहेंगे, उतना वो पेपर जो है हमें हमारे उसका मृत्यु का दुख का अशांति का साधन नहीं बनेगा। जितने साइक्लोन आएंगे, बहुत तूफान आएंगे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा, लेकिन हम बच्चों का अगर वॉइसलेस कनेक्शन बाबा के साथ है, जैसा कहा बाबा बंधा हुआ है, बाबा के ये शब्द हैं, बाबा बंधा हुआ है बच्चों की सेफ्टी के लिए, ये बाबा के महावाक्य हैं, बाबा बंधा हुआ है। तो जब सर्वशक्तिवान बंधा हुआ है हमारी सेफ्टी के लिए, हमें तो सिर्फ यही करना है, अपना कनेक्शन वॉइसलेस कनेक्शन रखना है, और वॉइसलेस कनेक्शन होगा तो बाबा बंधा हुआ है हमें सेफ्टी की तरफ ले जाने के लिए। तो ये वायु तत्व से बचने का लिए, उसके हाहाकार से बचने का है। चौथा कौन सा तत्व है? आकाश। आकाश तत्व में क्या विशेषता है, क्या है? विशाल आकाश, महानता, विशाल। तो ऐसे ही आकाश की तरह हमें अपने हृदय को बहुत विशाल बनाना है। भाव क्या है विशाल का? कि किसी की कमी कमजोरी उस बात को देखते हैं, उसे हम अपने दिल के अंदर न रखें, क्षमा कर दें। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो क्षमा का गुण है, आज हम यहाँ बैठे हैं, अपने अंदर झांक करके देखें, किसी ने मेरे साथ जितना भी नेगेटिव किया हो, अपमान किया हो और ऐसी बातें की हो जो हमारे बहुत विपरीत हों, लेकिन क्या मैंने उस बात को बदला लेने की भावना से अपने दिल में रखा है या उसे क्षमा कर दिया है? क्योंकि क्षमा ही एक ऐसा बड़ा गुण है महान आत्माओं का। जिन भी महान आत्माओं को आप देखोगे, वो उनके अंदर ये सबसे बड़े से बड़ा गुण, किसी भी धर्म के हो, चाहे कोई मदर टेरेसा हो, क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, और बाबा का तो हमने साकार में स्वयं देखा अनेक बार, इतनी बड़ी बड़ी बातें जैसा मैं बता रहा था, बाबा का क्षमा भाव। और आकाश का ये विशेष गुण है विशालता, विशालता यानी क्षमा भाव। और उससे क्या होगा, अगर हमने ये क्षमा भाव का गुण धारण किया होगा, तो आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आफतें होंगी, बम, मिसाइल, एटम बम, हाइड्रोजन बम और क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, जो अतिवृष्टि, ये जितने भी हैं आकाश मार्ग से आने वाली जो आपदाएं हैं, वो हमारा बिल्कुल भी बाल बांका नहीं कर सकती, अगर हमने आकाश जैसी विशालता को धारण किया होगा। तो अपने अंदर देखिएगा, कई बार होता है ऐसी बातें आएंगी, तुरंत इस बात को याद रखना, अरे हम तो मास्टर ब्रह्मा बाबा हैं, बाबा के कदम पर कदम रखे, जनवरी मास है, सबको बाबा की किताब भी वही मिली हुई है, तो ब्रह्मा बाबा की तरह बस मुझे भी आकाश की तरह विशालता धारण करनी है, क्षमा भाव, कोई भी बात हो जाए उसको क्षमा करते चले। ये विशेषता महान आत्माओं में, और हमसे ज्यादा महान तो कौन होगा पूरे संसार में, बाबा ने कहा है आपसे ज्यादा महान आत्माएं कोई नहीं हमसे ज्यादा। तो ये आकाश का विशेष गुण हो गया। और कौन सा अंतिम तत्व रह गया? अग्नि। अग्नि में कौन सा विशेष गुण होता है? अग्नि का स्वरूप होता है प्रकृति के अंदर अग्नि का स्वरूप सूर्य है और अग्नि में यही विशेष गुण होता है, अग्नि में जो भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है अब हमारा भी ऐसा अग्नि स्वरूप होना चाहिए जो ज्वालामुखी योग, जो बाबा ने कहा है ना, ऐसा ज्वालामुखी योग हो हमारे सम्मुख। बाबा ने कहा है आत्मा आए, रोती हुई आत्मा आए, हमारे सम्मुख आए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, रोती हुई आए, हंसती हुई वो आत्मा चली जाए। अशांत आत्मा आए, दिन के अंदर बहुत अशांति भरी हुई हो, लेकिन हम बच्चों का ज्वालामुखी स्वरूप देख करके वो सम्मुख आए, वो अपने रूप परिवर्तन उसका हो जाए, शांति के सागर में वो लहराती हुई चली जाए। ये रूप परिवर्तन तब होगा जब बाबा ने जो कहा वॉल्केनिक योग, यानी कि ये ज्वालामुखी योग, ये हम बच्चों ने अगर अपने अंदर विशेष करके धारण किया हुआ होगा और ये अंत समय में यही काम में आएगा, जो ज्वालामुखी योग हाँ वो काम में आएगा। हम किसी भी आत्मा का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा की जीवन कहानी तो सबने पढ़ी है ना, हाँ एक दृष्टांत उसमें आता है, जीवन कहानी में आप सबने देखा होगा कि जब यज्ञ के शुरू में बहुत आत्माएं ज्ञान में आती थी तो एक सिख परिवार भी आता था, तो वो सरदार जी तो ज्ञान में नहीं आते थे लेकिन उनका युगल बच्चे वगैरह आते थे तो उनको खराब लगता था और उसने ये निश्चय किया कि मैं बाबा को हत्या कर दूंगा। तो एक बार वो ऐसे ही छुरा छुपा के ले गया और टीचर को जाके बोला मुझे बाबा से मिलना है, और बाबा के पास वो बहन ले गई, बाबा के सम्मुख बैठा दिया और वो बहन तो चली गई अपना काम करने, और जब उसने देखा वो अलग है, एकांत है बाबा और वो है, तो आप सबने पढ़ा होगा दृष्टांत, उसने छुरा निकाला और वो आक्रमण करने ही वाला था, उसे क्या हुआ, उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा से। अब बाबा से सबको कौन सा साक्षात्कार होता, बाबा कौन सी आत्मा थी, गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं थी, बाबा तो श्री कृष्ण का नारायण की आत्मा थी, सबको बाबा से कृष्ण का नारायण का नई दुनिया का स्वर्ग का वो सब साक्षात्कार होता था क्योंकि बाबा वो आत्मा थी। लेकिन जैसी दृष्टि से जो आता है, जैसी जिसकी भावना होती है, उसकी भावना गुरु नानक देव में थी, इसलिए करण करावन हार दिव्य दृष्टि दाता तो शिव बाबा है, तो शिव बाबा ने उसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया, और जैसे उसे वो साक्षात्कार हुआ वो तो एकदम वायरा हो गया, अरे गुरु जी मैं कितना बड़ा महान पाप करने चला था, आपकी हत्या करने चला था, मुझे माफ कर दो, बहुत रोने लगा, और पूरा दृष्टांत लिखा हुआ है जीवन कहानी में, छुरा उसने बाबा के पैरों के पास रख दिया और बार बार माफी मांगता हुआ और रोता हुआ क्षमा याचना करता हुआ वो वहां से चला गया। तो ये जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पार्ट चला है वो हम एक एक बच्चों के द्वारा वो पार्ट चलने हैं। अंत में आत्माएं आएंगी, बहुत इच्छाएं लेके आएंगी, हम एक हैं, हमारे सम्मुख आएंगे, कोई कृष्ण की साक्षात्कार की इच्छा, कोई राम का, कोई देवी का भक्त होगा, कोई गणेश का होगा, कोई हनुमान का होगा, अनेक भावनाएं लेके लोग हमारे सम्मुख आएंगे, हम एक ही हैं, वही हैं, लेकिन जो जैसी भावना लेकर के आएगा हमारे सम्मुख, हमारे से उसे वैसा ही साक्षात्कार होगा, और जैसा साक्षात्कार होगा और बस वो आत्मा इतनी तृप्त होके चली जाएगी, हे प्रभु जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हम सबके द्वारा वो प्रत्यक्षता का अंतिम स्वरूप होगा। तो इसलिए हम सबके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, सेवा के द्वारा होगी, भाषण के द्वारा, सबके द्वारा तो होगी, लेकिन जब हम एक एक चैतन्य म्यूजियम बन जाएंगे तो हम सबके द्वारा ये प्रत्यक्षता होगी, हमारे सम्मुख लोग आएंगे और उन्हें ये जो इष्ट देव की इच्छा लेकर के वो आएंगे वो साक्षात्कार होगा, और तब ये ही भक्ति मार्ग के अंदर ना यहाँ पर हमारे द्वारा ऐसा साक्षात्कार होगा, द्वापर युग में वो ही हमारी मूर्तियां बना करके मंदिर में वो रखेंगे और इस प्रकार से भक्त जो है भगवान का दीदार करते रहे। तो इस तरह इन पांचों तत्वों को अगर हम अपना मित्र बना लेते हैं तो ये पांच तत्व हमारे सदाकाल के सहयोगी हो जाएंगे, और ब्रह्मा बाबा की तरह हम सब भी प्रकृति जीत और जगत जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।